मेरे अत्यंत सम्मानित मित्रों नमस्कार। आज 25 जनवरी 2019 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और स्वागत करने के साथ ही साथ मित्रों मैं आप सभी की ओर से एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से भी आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आप समझ गए होंगे कि ये शुभकामनाएं किस लिए हैं। दरअसल कल हमारा गणतंत्र दिवस है, दिन है शनिवार और आप जानते हैं कि शनिवार होने के कारण कल मैं अपने इस अवसर से वंचित रहूंगा कि आपसे ताजी ताजी बातें करके और ताजी ताजी शुभकामनाएं प्रेषित कर सकूं। तो दोस्तों एक दिन पूर्व ही सही मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। मित्रों आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में मैं पिछले ही अपने विषय को आगे बढ़ाना चाहूंगा। और कल जब मैं ईमेल पढ़ रहा था तो मुझे यह देखकर बेहद खुशी हुई कि आप सबने सामर्थ्य वाले विषय को बहुत अधिक पसंद किया है। और लगभग मुझे आश्चर्य हुआ कि सभी ने इस बात के प्रति अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है कि सर हम अपने सामर्थ्य को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आप कुछ व्यावहारिक उपाय सुझाएं। तो मित्रों मैं अब उसी विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मित्रों आज के अपने इस लाइफ मैनेजमेंट को मैं अपने श्रद्धेय फूफा जी को समर्पित करना चाहूंगा जिनका नाम था जगदीश प्रसाद अग्रवाल। मेरे फूफा जी जो 75 वर्ष की उम्र में अभी 16 जनवरी को ही इस दुनिया से विदा हो गए। मैं आज उन्हें क्यों याद कर रहा हूं, या यूं कह लीजिए कि इस विषय के साथ उनका क्या संबंध है। मित्रों उन्हीं को आधार बनाकर मैं आपसे सामर्थ्य बढ़ाने के बारे में कुछ बातें करूंगा। और आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा कि इनफैक्ट जब हम अपनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो हमें कैसे बहुत छोटी छोटी ऐसी चीजों पर भी ध्यान देना होता है जो अन्यथा हमारे दिमाग में आती ही नहीं है। लेकिन इस सामर्थ्य बढ़ाने वाले बिंदु में भी आप कहीं ना कहीं साहस का रोल पाएंगे और साथ ही साथ सतर्कता का भी रोल आपको दिखाई देगा। बहुत समय पहले की बात है मित्रों, उस समय मैं 6th में ही पहुंचा था, 6वीं क्लास में। हम लोगों के समय में 6वीं क्लास से ही अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू होती थी और गांव में तो खासकर। तो 6वीं क्लास में मैं पहुंच गया था और अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू हो गई थी। क्लासेज अभी लगनी शुरू ही हुई थी कि गांव से मुझे शहर आना पड़ा। ऐसे एक दो दिन के लिए बीच में हम लोग आते रहते थे और उस समय तक मेरी 3 बुआ अंबिकापुर में ब्याही जा चुकी थी और हम लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन होता था दादी के और दादाजी के और सबके कि जब तुम शहर जाओ तो तुमको 3 बुआ से मिलकर आना है और 3 फूफा जी से भी मिलकर के आना है। देखिए उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे कि आप हालचाल पूछ लें, यही एक साधन था कि आप जाइए मिलकर के आइए और हालचाल पूछ लीजिए। तो यह हम लोगों के लिए नियम था और हम लोग को बड़ी खुशी होती थी मिलकर के। हम लोग जाते थे, पांव छूते थे, वो हालचाल पूछते थे, कुछ खिलाते पिलाते भी थे। तो 3 बुआ जी और 3 फूफा जी से मिलना अनिवार्य होता था। हमारे 3 फूफा जी दुकान करते थे और कपड़े की दुकान थी। तो मैं भी जिन फूफा जी की बात कर रहा हूं, जगदीश प्रसाद, उनका राम श्याम क्लॉथ उनका उनके शॉप का नाम था, वहां मैं मिलने गया। और जब मैं मिलने गया तो बड़े प्रेम से, बहुत ही प्रेम से बात करते थे, बहुत ही स्नेह तरीके से बात करते थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम किस क्लास में पहुंच गए, किस क्लास में पढ़ते हो। तो मैंने कहा कि फूफा जी मैं 6th में पहुंच गया हूं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बफेलो का क्या मतलब होता है। मुझे वो शब्द अभी भी याद है, बफेलो, BUFFELO, बफेलो का, BUFFELO, बफेलो का क्या मतलब होता है। मित्रों मैं थोड़ी देर सोचता रहा, नहीं बता पाया। अब लेकिन उत्तर कुछ न कुछ तो देना था, चुप तो मैं रह नहीं सकता था। मुझे वो घटना बिल्कुल याद है, बिल्कुल दृश्य याद है कि मैं कहां बैठा हुआ था, कैसे मेरे फूफा जी सामने गद्दी पर पालथी मार करके, वो जनरली पालथी मार करके बैठते थे और अच्छी हाइट थी उनकी, 6'1" 6'2" के करीब उनकी हाइट रही होगी, बैठे हुए थे बिल्कुल तन करके, स्ट्रेट चलते थे और स्ट्रेट बैठते भी थे। तो जब मुझे कोई उत्तर नहीं सूझा तो मैंने ये जवाब दिया कि नहीं, यह अभी हमें पढ़ाया नहीं गया है। ध्यान दीजिए कि मैंने उत्तर दिया कि यह अभी पढ़ाया नहीं गया है। उन्होंने मेरे इस उत्तर को सुनने के बाद मुझसे कहा कि बेटे, अगर पढ़ाया नहीं गया है तो कोई बात नहीं, तुम अपनी तरफ से भी तो पढ़ सकते हो। दोस्तों, ये पहली घटना याद रखिएगा, ये पहली घटना। कुछ दिनों के बाद मुझे फिर जाना पड़ा। अक्सर कुछ ऐसी स्थितियां आती थी कि शहर हम लोग जाते आते रहते थे। कुछ दिनों के बाद जब मैं फिर उनसे मिलने गया तो मुझे कहीं ना कहीं मन में डर तो लग रहा था कि कहीं फिर से फूफा जी कुछ पूछ न बैठें और कहीं ऐसा न हो कि फिर मैं जवाब न दे सकूं और फिर मुझे बड़े शर्मिंदगी उठानी पड़े। लेकिन जाना तो था ही, क्योंकि दादाजी दादी जी के इंस्ट्रक्शन होते थे कि सभी बुआ से मिलकर आना है और सभी फूफा जी से मिलकर के आना है। तो मित्रों, मैं फिर गया और फूफा जी ने फिर से प्रश्न किया। ये हमारे फूफा जी थे जो प्रश्न किया ही करते थे। फिर से उन्होंने प्रश्न किया और उन्होंने कहा कि बेटे, तुम ये बताओ कि अभी एक बहुत बड़ी घटना हुई है पूरी दुनिया में, वो कौन सी घटना है। मैं कहा कि दुनिया में कौन सी घटना है। अब आप देखिए कि उस समय की बात पर जाइए आप, 1970 के आसपास की मैं बात बता रहा हूं, और उस समय के भारत की कल्पना कीजिए, गांव की कल्पना कीजिए। आज जैसे टीवी रेडियो इस तरह से नहीं हुआ करते थे कि अखबार पहुंच रहे, नॉट एट ऑल। तो उन्होंने कहा कि कौन सी दुनिया की एक बहुत बड़ी घटना हुई है। मैं फिर चुप हो गया। मैं कहा कि फूफा जी, मुझे तो नहीं मालूम कि कौन सी इतनी बड़ी घटना हुई है। तो उन्होंने बताया कि देखो, जो आदमी है वो चांद पर उतर गया है, नील आर्मस्ट्रांग जो है उसी दिन चांद पर उतरे थे। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। तो फिर उन्होंने एक वाक्य कहा था कि बेटे, ये सब बड़ी जरूरी चीजें होती हैं, ये मालूम करते रहना चाहिए। दोस्तों, ये उनके दो वाक्य हैं, उनके दो वाक्य। अब आप देखिए कि इनका क्या संबंध सामर्थ्य को बढ़ाने से है। जो उन्होंने पहला वाक्य मुझे कहा कि किताब में अगर नहीं पढ़ाया गया है तो इसका क्या मतलब है, क्या तुम पढ़ोगे नहीं, तुम्हें अपनी मतलब, जो भी उन्होंने वाक्य कहा, दोस्तों उसने उनके इस वाक्य ने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि नहीं, मुझे पढ़ने के लिए क्लास में पढ़ाए जाने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे पास किताब है और वक्त है तो मैं भी तो पढ़ सकता हूं, मैं पहले भी पढ़ सकता हूं। जरूरी थोड़ी है कि अगर क्लास में नहीं पढ़ाया गया तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं। उस दिन से मैंने पढ़ने के अपने तरीके को बदल दिया और फिर जो कुछ भी क्लास में पढ़ाया जाना होता था उससे मैं पहले ही पढ़ चुका होता था। ये बचपन की बात बता रहा हूं मैं। और स्वाभाविक है कि जब आप फिर क्लास में जाकर के उन्हीं चीजों को सुनेंगे, जब आपको पढ़ाया जाएगा तो कुछ ना कुछ चीजें तो आपके बैक ऑफ द माइंड है, तो आपको समझ में भी चीजें ज्यादा आएंगी और आप अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे अधिक उत्तर देने की स्थिति में भी होंगे, तो आपके क्लास में धाक भी जम जाएगी। पहली बात, ये मेरे पढ़ने के तरीका रहा, थ्रू आउट लाइफ मेरे पढ़ने का तरीका रहा। मतलब मैं क्लास पर डिपेंडेंट नहीं रहा और शायद इसी वजह से एज ए प्राइवेट स्टूडेंट मैं अपनी पढ़ाई पूरी भी कर सका, क्योंकि मेरे क्लास की निर्भरता मेरी खत्म हो चुकी थी। देखिए कैसे चीजें जुड़ जाती हैं। दूसरी बात, जब उन्होंने कही कि नहीं बेटे, ये सब खबरें, ये सब चीजें जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए, तो अब ये हुआ कि अब पता लगे तो लगे कैसे। तो दोस्तों, फिर हमारे घर में 1965-66 के आसपास मेरे पिताजी एक रेडियो लेकर के आ गए थे और मैं देखता था उनको कि कभी कभी वो ध्यान से रात में कुछ चीजें सुन रहे हैं, कोई आदमी बोल रहा है वो लगातार सुन रहे हैं, समझ में नहीं आता था क्या सुन रहे हैं। रेडियो का मतलब तो हमारे लिए गाना बजाना होता था, लेकिन वो कुछ चीजें सुनते रहते थे। फिर मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अभी फूफा जी ने कहा है कि जानकारी रखनी चाहिए वो वही चीजें सुनते हों। तो गांव में जाकर के जब मैंने पता किया तो समाचार हुआ करता था, न्यूज हुआ करती थी वो। तो दोस्तों, 1970 से फिर मैंने न्यूज सुननी शुरू की। नहीं समझ में आती थी, कोई चीजें नहीं पता लगती थी, लेकिन न्यूज सुनने की शुरुआत थोड़ी थोड़ी मैंने वहां से कर दी और मुझे लगता है कि इन दोनों बातों ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। अब आप देखिए कि कितनी छोटी सी घटनाएं हैं ये दोनों, लेकिन उन दोनों ने मेरे सामर्थ्य को बढ़ाने में कितना बड़ा रोल प्ले किया है। अंतिम बात है मित्रों, अपने फूफा जी के बारे में ही मैं बताना चाहूंगा कि वो पिछले 2-3 सालों से बहुत जबरदस्त रूप से बीमार थे, बहुत ही जबरदस्त रूप से बीमार थे। दिल्ली में उनका इलाज किया चल रहा था, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स उन्हें देख रहे थे और हम लोग ये मान करके चल रहे थे कि फूफा जी अब ज्यादा दिन के नहीं हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, उनके चेहरे पर रत्ती भर भी ये दिखाई नहीं देता था कि उनमें कहीं हताशा का भाव है, कहीं निराशा का भाव है। अगर कोई व्यक्ति उनकी बीमारी के बारे में नहीं जान रहा है तो उनके चेहरे को देख करके ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये बीमार भी होंगे और इतने गंभीर रूप से बीमार होंगे। और सच पूछिए तो उनकी यह जो जीवनी शक्ति थी और जीने की इच्छा थी, उसी ने उनके जीवन को लगभग लगभग मुझे लगता है कि 2 साल बढ़ाकर हम लोगों के सत्संग के अवसर को बढ़ा दिया। अन्यथा मुझे लगता है कि अगर वो अपनी जीवनी शक्ति खो बैठे होते तो शायद हम लोग अपने फूफा जी को 2 साल पहले ही अपने बीच से खो चुके होते। गजब की जीवनी शक्ति। और मैं यहां बताना चाहूंगा कि वो कोई बहुत हाईली एजुकेटेड व्यक्ति नहीं थे, लेकिन जीवन की जो उनकी समझ थी मित्रों, वो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के पास भी नहीं हो सकती, अद्भुत थी। और जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया तो जब भी मैं और मैडम जाते थे, खूब बातें करना चाहते थे, देश और दुनिया की कितनी बातें वो सुनना पसंद करते थे, अपनी नहीं सुनाते थे, सुनना पसंद करते थे, इतने प्रश्न करते थे। और मुझे आश्चर्य होता था कि फूफा जी के दिमाग में इतने सारे प्रश्न आ कहां से रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से विकसित होती है हमारी सामर्थ्य। छोटी छोटी चीजों में आप अपने सामर्थ्य को विकसित करने के सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक मैंने अपने फूफा जी को फूफा जी कहकर संबोधित किया था और अब इस लाइफ मैनेजमेंट के अंतिम हिस्से में अब मैं उन्हें अपना गुरु कहकर संबोधित करना चाहूंगा। वे गुरु जिन्होंने मेरे दिमाग की जमीन पर वो बड़े मजबूत और बड़े मूल्यवान बीज डाले, जिसकी वजह से मैं जीवन में थोड़ा बहुत कुछ करने की स्थिति में हो सका। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं फिर से अपने फूफा जगदीश प्रसाद जी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं अपनी ओर से और अपनी पत्नी प्रीति अग्रवाल की ओर से भी, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें अपने शरण में, अपने चरण में स्थान दें। तो मित्रों, आज की लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। 2 दिनों के बाद फिर आप सबसे मुलाकात होगी और फिर ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।